ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर 36 वर्स पेज नंबर 137। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। वेल, अर्जुन ने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने पिछले श्लोकों में हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग की बात हो रही है, नहीं, मेरी सेवा करो। और भगवान ने बताया कि अगर मेरी सेवा करनी है तो अपने स्वभाव के अनुसार करो, चाहे उसमें कुछ गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम उसमें इतने परफेक्ट भी नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरे को इमिटेट करने का कोशिश करने की कोशिश मत। इमिटेट कैसे कहेंगे? नकल, अनुकरण। हाँ, अनुकरण। हाँ, अनुकरण। तो ऐसा मत करो, नहीं, जो स्वभाव है उसके अनुसार भगवान की सेवा करो। भगवान की दृष्टि में सभी सेवा समान है, भगवान सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, शर्त है कि उसमें कपट नहीं हो, बस इतना है और कुछ नहीं है। सो अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवान ठीक है, अब भगवान ने यह भी कहा कि अगर अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करोगे तो आसान होगा करना, नहीं? अगर कोई ब्राह्मणिकल कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ने का शौक है, अगर वो पठन पाठन करे, दूसरों को पढ़ाए, तो उसका इंटरेस्ट भी है और भगवान की सेवा भी हो गई तो आसान हो गया, नहीं? अगर कोई मैनेजमेंट में है, उसका इंटरेस्ट भी है और भगवान के लिए मैनेजमेंट कर ले, मंदिर बना ले, प्रोग्राम्स मैनेज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं। मगर फिर भी अर्जुन ने पूछा, भगवान ठीक है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरी सेवा यहाँ पे युद्ध करने की है, सो दैट्स नाइस, क्योंकि मैं वैसे इंटरेस्ट है और अभी सेवा भी हो गई, अच्छा हो गया। मगर भगवान ये बताइए, इजी है मगर फिर भी सेवा करते हुए कभी कभी मन विचलित हो जाता है, प्रॉब्लम ये है, न चाहते हुए भी हम पाप कर्मों में प्रेरित हो जाते हैं। अगर सेवा आसान है तो उसमें मन भी लग जाता है, नहीं? जब सेवा आप अपने स्वभाव के अनुसार करो तो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है ना, और जब इंटरेस्ट से भगवान के लिए करोगे तो फिर मन संतुष्ट होगा, शांत होगा, मन संतुष्ट और शांत होगा तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी तो फिर पाप करने का मन विचलित नहीं होता जाता। मगर फिर भी अर्जुन कह रहे हैं, भगवान मगर फिर भी मन विचलित हो जाता है, पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक, बलादेव नियोजिता, किसी ने बलपूर्वक मन खींच लिया है, और ऐसा हो ही जाता है, नहीं? मतलब चैंटिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी अचानक से माइंड आउट होता है, नहीं? सो आप मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मेरी चैंटिंग अभी 2 मिनट बाद खराब हो जाएगी नहीं, मतलब इतनी अच्छी चैंटिंग हो रही होती है कभी 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 आसमान में उड़ रहे होते हो और सीधा पताल में होते हो ऐसा क्यों है? क्यों है ना, हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा हो रहा है? एक बात तो है कि हमारे चाहते हुए ऐसा हो तो चलो समझ आ जाए, ना चाहते हुए क्यों हो रहा है, क्वेश्चन है, नहीं? उसका आंसर अब भगवान कह रहे हैं, उसका आंसर भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। मगर इस क्वेश्चन में ना एक बहुत बड़ा एक और क्वेश्चन है कि भगवान अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते हुए, मतलब अगर आपकी सेवा कर रहे अपने स्वभाव से, हमारा मन भी कर रहा है आपकी सेवा करने का, तो क्या आपकी कृपा में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारा मन आप अपने अपने चरणों में ले ही ले, मतलब एक भाग क्यों नहीं कर रहा है हमारा मन? प्रॉब्लम क्या है? कहीं तो प्रॉब्लम है ना, क्या करें? तो भगवान अब आंसर कह रहे हैं उसका। भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि देखो, प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं आखिरी लाइन में, देखो तात्पर्य में, किंतु ये पाप कर्म एसी से क्या है? एनीवे, सो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं एंड में, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये पाप कर्म, भगवान कह रहे हैं कि देखो पाप कर्म मैं प्रेरित नहीं करता, तुम जो सेवा कर रहे हो मेरी, सेवा भावना को मैं प्रेरित कर देता हूँ हृदय में बैठ के, तुम्हें उत्साह देता हूँ सेवा करने का, मगर जब पाप करते हो तो वो मैं प्रेरित नहीं करता, पाप कोई और प्रेरणा दे रहा है। अब वो कौन है, कौन प्रेरणा दे रहा है हमें पाप करने की? तो भगवान उत्तर कर रहे हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच 37 श्लोक में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विद्धि एनम इह वैरिनाम। एक वैरी है तुम्हारे हृदय में, वैरी मतलब, वैरी तो समझते हो दुश्मन, शत्रु, एक शत्रु है तुम्हारे हृदय में जो कि पाप कराएगा। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम वासना है, जो बाद में क्रोध रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो एक दुश्मन है हमारे हृदय में, और उस दुश्मन का नाम है काम वासना। काम जही शत्रु महाबाहो काम वासना, और वो हमें प्रेरित करता रहता है अंदर से पाप करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि वो शत्रु वैसे, मतलब अगर आपके घर में कोई रह रहा है तो आपने तो अलाउ किया उसको रहने के लिए, आप ये नहीं कह सकते यार वो प्रेरित कर रहा है मैं क्या करूं, आपका घर है, शरीर आपका घर ही है ना, आप इसमें रह रहे हो, आपने अलाउ किया काम वासना को यहां पर रहने के लिए, ठीक है, प्रेरित कर रहा है। ऐसे वो नहीं थी मंत्रा के कई, सो क्या हुआ, मंत्रा नहीं तो सब चक्कर चलाया था घर में, घर क्या, वो क्या कहते हैं, घर का भेदी लंकट है, बस वो ही बात है, वो घर में बैठी थी, उसने प्रेरित कर दिया केकई को, केकई का दिमाग घूम गया, उन्होंने दशरथ जी को कह के राम भगवान को वनवास दिला दिया। ना मंथरा होती तो ना केकई का दिमाग घूमता, ना दशरथ जी दुखी होते, ना राम भगवान का वनवास होता, सब सही चलता। अब मंथरा को किसने रखा था, कि कई ने तो अलाउ किया था, दशरथ महाराज ने अलाउ किया था ना, तो गलती एक्चुअली उनकी थी, गलती अब इसे मंथरा की भी नहीं मान सकते आप, गलती उन्हीं की थी, क्योंकि उन्होंने रखा क्यों, पता होना चाहिए किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो उसी प्रकार काम वासना हमें प्रेरित करता है पाप करने के लिए, मगर गलती किसकी है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने अलाउ किया उसको अपने पास रखने के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, कि काम वासना कैसे प्रकट होता है, रजोगुण से हम अलाउ करते हैं काम वासना। क्यों, क्योंकि काम वासना पता है अभी हमारा फ्रेंड बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, तो रजोगुण क्या है, भोग वासना, हम एंजॉय करना आते हैं ना संसार, तो फिर हम एंजॉय करना आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है मेरा रहो, मेरे घर में रहो, उसमें क्या है, एंड वी विल एंजॉय। कभी कभी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी जो लोग शराब पीते हैं घूमने जाते हैं तो उनके उनकी कंपनी भी वैसी होती है ना, फ्रेंड्स तो गंदे फ्रेंड्स होते हैं, कहते हैं चलो आ जाओ यार मेरे घर में रह लेना पार्टी करेंगे, होता है नहीं होता है। सो समझे नहीं समझे, ऐसा होता है नहीं होता है, अगर आप अच्छे हो तो आप गंदे फ्रेंड्स को अलाउ ही नहीं करोगे, कहोगे यार बस हो गया ठीक है तुम अपने घर जाओ, वैसे नहीं रह सकते हमारे साथ, बुरे हो तो अपने आप बुरे लोग साथ में आ जाएंगे, बस तो गलती आपकी है, दैट्स ऑल, अ मैन इज नोन बाय हिज बाय द कंपनी ही कीप्स, नहीं। सो बस यही है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. कंपनी से पता लग जाएगा कि वो आदमी क्या है. खराब कंपनी है तो खराब आदमी है. अगर काम वासना हृदय में है तो आप खराब हो. काम वासना तो खराब है ही. खराब आप हो तभी आपका रह रही है वो. सो पॉइंट भगवान यहां पे बता रहे हैं कि हम ही कारण है अपने, हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है. बस ये समझ लो. अगर हम चाहें तो अभी हम काम वासना को गेट आउट कर सकते हैं. अगर हम चाहे तो. अगर हम नहीं चाहोगे तो आपके साथ वो रहती रहेगी और कबाड़ा करेगी. हम जिसको दोस्त समझ रहे हैं एक्चुअली वो बड़ी दुश्मन है. इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं महाशनो महापापमा. महाशनो मतलब पेटू, अशनो मतलब खाना. खाना बहुत पेटू है काम वासना नहीं. सो भोग की इच्छा मतलब अगर काम वासना आपके साथ होगी तो भोग की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आपका पेट ही नहीं भरेगा. नहीं, कभी कभी हम गंदे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स गंदे होते हैं, मगर फ्रेंड्स गंदे फ्रेंड्स के रह के हम और गंदे बन जाते हैं. आउट ऑफ कंट्रोल हो नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है. तो महाशनो महापापमा, महापाप कराएगी काम वासना. और पता क्या होता है, जब पहले तो चलो आपने उसको अलाउ कर दिया अपने अपने पास रहने में काम वासना को, क्योंकि आपकी इच्छा थी एंजॉय करने की. तो आपने कहा आ जाओ यार मेरे साथ रहो, आप क्या रह ली नहीं. फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जब वो फ्रेंड गंदा होता है ना तो वो गलत एडवाइस करता रहता है. यही होता है ना, होता यही है. एडवाइस गलत ही तो आती है माइंड से, हम सब सही कर रहे होते हैं. मन कहता है यार ठीक है अभी चलो, क्या है मतलब, क्या है बिना ऑफरिंग के खा लो, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, खा ले क्या फर्क पड़ रहा है. नहीं, यही कहता है ना अभी मारो तो सब. वो कौन कह रहा है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो आत्मा नहीं कह रही हमारी, ना परमात्मा कह रहे हैं, वो काम वासना कह रही है. अब प्रॉब्लम ये, हमें कैसे पता लगेगा कि ये आवाज हमारे आत्मा की है या मन की है या परमात्मा की है, वो कैसे पता लगेगा, कोई बता सकता है. अगर आपको पता लग गया, आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप बच जाओगे. अगर आइडेंटिफाई नहीं करना आया तो फंस गए. अपनी एंजॉयमेंट एक्चुअली जब वो एडवाइस करती है ना तो बुद्धि भी नष्ट हो जाता है. वो समझ ही नहीं आता. आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आपको सब कुछ सही लगने लगता है. प्रॉब्लम भी होती है. नहीं हाँ, तो भगवान कह रहे हैं महाशनो महापापमा. काम वासना की एडवाइस हमेशा पाप कराएगी. गंदे फ्रेंड्स हमेशा कहेंगे ड्रग्स पियो, गंदी चीज करो. गंदे फ्रेंड्स थोड़ा ना कहेंगे मंदिर जाओ. गंदे उसको क्या लेना देना है उससे, वो तो हमेशा उल्टी एडवाइस करेंगे. सो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर भगवान के भक्तों के और गीता के बिल्कुल उल्टी एडवाइस चल रही है तो इसका मतलब वो काम वासना की आवाज है. मत सुनो, एंटरटेन मत करो. अगर आपने थोड़ा सा भी एंटरटेन कर लिया तो फंस गया, बस फंस जाओगे आप, 100% फंस जाओगे. उसको उसी टाइम खत्म करना पड़ता है, उसी टाइम रोकना पड़ेगा, दैट्स ऑल. तो मन कहेगा, आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा, मन कहेगा कि यार बस 2 मिनट व्हाट्सएप में देख लेते हैं क्या हो रहा है, बस देख लेते हैं, पता नहीं क्या है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया. लोगों की आदत होती है ना चैंटिंग करते वक्त फोन में पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उसी टाइम फोन करना है, पूरे दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं. तो वह हमारे यहाँ देख लेते हैं क्या है, 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट निकालोगे और बस उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. उसी टाइम शट अप करना पड़ता है, शट अप. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज आप गए वो आपको खींच लेगा. समझे नहीं समझे, अभी भगवान आ जाएंगे इसी पॉइंट पे. इसीलिए भगवान अपने श्लोक में कह रहे हैं 38 श्लोक में कि धूमे नावृते वन्नी यथा आदर्शो मलेन च यथो उल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेने दम आवृतम. भगवान 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं काम वासना के, 3 एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल है कि अग्नि धुएं से घिर से ढका हुआ है. जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण मतलब शीशा धूल से, अथवा भ्रूण क्या है, एम्ब्रियो गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है. सो काम वासना की तीन स्टेज होती हैं, धीरे धीरे ना आप फंसते जाओगे। पहली स्टेज है अग्नि पे धुआं। तो अग्नि पे धुआं क्या होता है, धुआं अपने आप चला जाता है, नहीं जब अग्नि प्रज्वलित होती है धुआं अपने आप खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, आपको धुआं हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी खांसी जरूर आएगी फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, दूसरी स्टेज है जब थोड़ी और, दूसरा एग्जाम्पल है शीशे पे धूल, शीशे पे धूल अपने आप खत्म नहीं होता, आपको साफ करना पड़ता है। और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय में, वो तो पेट के अंदर ही है, कुछ नहीं कर सकता आप, वो जब निकलेगा तब निकलेगा या निकलेगी, व्हाटएवर, आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर ट्रैप्ड। सो काम वासना की थ्री स्टेजेस होती हैं। पहले तो स्टेज होती है काम वासना की सिर्फ एडवाइस करना, नहीं सो एक आवाज आती है, लोग नहीं कहते छोटी आवाज, छोटी आवाज नहीं कहते आजकल चला हुआ है, नहीं हाँ आजकल चला हुआ है वो छोटी आवाज आती है, कौन मुझे कह रहा था छोटी आवाज, मुझे भूल गया मैं, राहुल राहुल चला हुआ है स्मॉल वॉइस। सो या एक आवाज मतलब आती है, तो ये पहली स्टेज है एडवाइस, बस माइंड काम वासना एडवाइस करेगी कर कर लो, बस रूल्स तोड़ दो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पहाड़ टूट रहा है। अगर आपने इस टाइम पे अपना संकल्प स्ट्रांग कर लिया, अगर आप नहीं सुना तो धुआं धीरे धीरे अपने आप हट जाएगा, जब एडवाइस करेगा ना आपकी आंखें धुंधली हो जाएंगी, अब वो सत्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगर दिखाई भी दे रहा है आपको धुंधला दिखाई देगा, आप कहोगे क्या करूं क्या करूं, आप गलत चीजों में मतलब पूरी चांसेस है कि आप पड़ जाओ, मगर अगर आपने उसी टाइम रोक दिया तो धीरे धीरे अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी, धुआं हट जाएगा, आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा, कंट्रोल में आ गई सिचुएशन। मगर अगर आपने नहीं, अगर आपने सुन ली एडवाइस तो क्या होगा, तो आप सेकेंड स्टेज पे पहुंच गए, दर्पण धूल से ढक गया, तो क्या सेकेंड स्टेज क्या होगा, धीरे धीरे आपके हृदय में, दर्पण मतलब हृदय का जो शीशा है उस पर धीरे धीरे धूल जम जाएगी, धूल जम जाएगी तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, धुएं के साथ तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है, एक बार धूल जम गई तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब आप अब आप इस सिचुएशन में पहुंच गए कि वापस आना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया माइंड, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। और अगर आपने उस टाइम भी कंट्रोल नहीं किया, अगर उस टाइम आपने डिवोटीज का संग नहीं लिया या अकेले हो, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप थर्ड स्टेज पे पहुंच गए गर्भाशय, भ्रूण गर्भाशय से आवृत हो गया, मतलब ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गया ना बच्चा, बाहर कैसे निकलेगा, हिल भी नहीं सकता, प्रभुपाल दिख रहे हैं कि जो बच्चा है पेट में हिल भी नहीं सकता, नहीं उसको एक ही जगह थोड़ा बहुत हिलेगा बट वो ट्रैप्ड है, फिर ट्रैप्ड हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बच्चा जैसे 9 महीने बाद निकलेगा, आपके आप भी पता नहीं कब निकलोगे वहां से, कुछ नहीं कह सकते, एक बार फंस गए आप, 9 महीने 9 साल या 9 जन्म वो डिपेंड करता है कब तक ट्रैप हुआ उसके में, ट्रैप हो गए। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पहली स्टेज जो है ना वो कनिष्ठ अधिकारी की है, जब हम भक्ति में नए होते हैं ना तो ऐसा होता है, मन एडवाइस करते रहते हैं, धुंधला होता रहता है दृष्टि, समझ नहीं आता, तो नई स्टेज में व्यक्ति ध्यान नहीं देता और फिर धीरे 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 वो और ट्रैप हो जाता है, उसका मन उसका धूल जम जाती है और फिर पूरी तरह ट्रैप हो जाता है, फिर कई लोग छोड़ देते हैं भक्ति, ट्रैप हो गया ना पूरा, छोड़ दिया पूरे जन्म के लिए खत्म, फिर पता नहीं कब निकलेगा उससे, या कई लोग इतनी धूल जम जाती है कि वो करता है भक्ति मगर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलता रहता है बस मशीन की तरह, ऐसे भी होते हैं ना डिवोटीज, मशीन की तरह चलते रहते हैं बस, सुबह उठे चैंटिंग, घर गए काम किया, शाम को चैंटिंग की सो गए, फिर जो भी अपना कर रहे हैं, सुबह उठ गए चैंटिंग काम किया सो गए, और ऐसे ही चलता रहेगा, लाइफ नहीं है उसमें, नहीं शीशे में रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, नहीं रिफ्लेक्शन ही दिखाई नहीं दे रही, बिना बिना लाइफ के वो भक्ति करता जा रहा है, बिना एंथुसियाज्म के, भैया कोई शीशे में अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी तो मजा क्या आएगा, क्या कर रहे हो शीशे के सामने खड़े होके, परछाई दिखाई तब मजा आता है ना, कभी बाल देखते हो, कभी होंठ देखते हो, कभी आंख देखते हो, कुछ होता है नहीं होता, कुछ तो होता है और अपने आप को देखने में सबको मजा आता है किसको मजा नहीं आता अपने आप को, चाहे वो बिल्कुल एक नंबर का थर्ड क्लास घोचू होगा फिर भी मैं हीरो हीरोइन हूँ, कितना सुंदर हूँ, पता नहीं कैसी माया है नहीं मतलब मैंने इतने कुरूप लोग भी होते हैं, इतने मतलब नॉनसेंस लोग होते हैं, फिर भी पता नहीं शीशे में देख के उसको क्यों लगता है कि वो बहुत हीरो है। आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। चले आप लोगों ने इस पे सोचा है कभी? तो फिर आंसर क्या है इसका? आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा होता है। सो मजा नहीं आता नहीं मैकेनिकली। तो ये तीन स्टेजेस हैं भक्ति की, एक है डिस्टर्ब स्टेज, दूसरी है मैकेनिकल स्टेज, मशीन इधर चलते रहोगे, तीसरी आप ट्रैप तो खत्म छूट गई भक्ति बस। और प्रभुपाद अपने पर्पट में और भी एग्जांपल दे रहे हैं, प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि पहली स्टेज है काम वासना की, धुएं वाली वो भक्तों की है जो नया भक्त है अभी। अगर भक्ति करता रहेगा तो धुआं हट जाएगा और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जो धूल ढका हुआ है दर्पण पे वो स्टेज है जैसे जैसे जानवरों की, पशु पशु पक्षियों की, उसने सुनी नहीं बात, ध्यान नहीं दिया तो ऊपर जाने की बजाय नीचे की उंगलियों में चला जाएगा, पशु पक्षी में चला गया। जैसे भरत महाराज जड़ भरत क्या बन गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे धूल आ गई और सॉरी धुआं आ गया, धूल जम गई और वो अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण गल्लो। तो दूसरी स्टेज क्या है, पशु पक्षियों की। और तीसरी स्टेज है पेड़ पौधों की, जो भ्रूण गर्भाशय में होता है। तो अगर आप फिर भी ध्यान नहीं दोगे, भरत महाराज ने चलो डियर की स्टेज में वो मतलब उनको सौभाग्य था कि बच गए, उनको याद था, अगर याद नहीं होगा तो धीरे 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 फिर नीचे चले जाओगे, फिर पेड़ पौधे बन जाओगे। पेड़ पौधे वैसे पता है पेड़ कौन बनता है, किसी को पता है कौन बनता है पेड़?
बहुत ज्यादा जीने की इच्छा
तो जो लोग वहां नहीं आते, जिम में नहीं आते, जिम में नहीं देखा कभी ऐसे खड़े होते हैं वो ऐसे ही तो पेड़ होते हैं, टहनिया होती है, वो देखता रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, भगवान कहेंगे ठीक है लो टहनिया ले लो, खड़े रहो ऐसे। और बॉडी स्ट्रांग भी बनाते हैं, तो उनकी बॉडी तो मैं स्ट्रांग बन गई पेड़ की, ठीक है भैया बहुत स्ट्रांग बॉडी होगी तुम्हारी से पेड़ ऐसे होते हैं नहीं, अगर आप देखो अलग अलग अजीब अजीब पोजीशन में होते हैं, वही जिम वाली वही लोग बनते हैं बाय द वे। और जो मॉडल्स होती हैं, जो फीमेल मॉडल्स, वो लोग क्या बनती होंगी, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था बाय द वे। सो वो लोग पेड़ नहीं बनती होंगे, क्योंकि पेड़ तो थोड़े स्ट्रांग है ना उसका, तो वो मसल थोड़े ना बनाती हैं, वो तो दिखाती हैं अपने अंग, वो तो वो शायद वो बन जाती होंगी लता और गुल, जाओ चिपक जाओ पेड़ से और क्या नहीं। सो दैट्स लाइक दैट। सो ये लॉज है शास्त्रों के, भगवान ये तीनों एग्जाम्पल से कर्मों के नियम बता रहे हैं, काम वासना से धीरे धीरे नीचे की योनियों में आप चले जाओगे और फिर ट्रैप हो गए। सो भगवान अभी यहाँ पे काम वासना की शक्ति बता रहे हैं, ये शत्रु है ना आपका, उसकी शक्ति भी तो बतानी है, अब उसे लड़ना है तो पहले बताना पड़ेगा ना कि एनिमी की शक्ति क्या है। फाइट में तो ये रूल होता ही नहीं होता है, भी राम भगवान ने हनुमान जी को भेजा था अयोध्या में, ऑफकोर्स अयोध्या सॉरी क्या कह रहा हूँ लंका, सीता देवी को ढूंढने भेजा था, मगर हनुमान जी लंका में जाके दुश्मन की शक्ति भी पहचान के आ गए नहीं, तभी उन्होंने सारा जला दी लंका और वो सारा घूम भी ली सारी लंका में, क्या पोस्ट है कहाँ है, कहाँ रावण रहता है, कितने गेट्स हैं, सब देख दाख के आ गए। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि काम वासना की शक्ति क्या है, देखो इतना शक्तिमान है काम वासना कि धीरे धीरे तुम्हें नीचे की योनियों में भी ले जाएगा, तो ध्यान रखो। और कहाँ रहता है अबे, नहीं उससे पहले कह रहे हैं, उससे पहले और शक्ति बता रहे हैं कि इस प्रकार 39 श्लोक में, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसे काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्य भैरिना, कृष्णा कह रहे हैं कि चाहे आप कितना ही ज्ञान ले लो, कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाओ, काम वासना इतना शक्तिमान है कि आपके सारे ज्ञान को ढक डालेगा। आप कितनी बार गीता सुन लो मगर जब इच्छाएं आएंगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो ढक देगा आपका माइंड, पूरी तरह ढक देगा। आके माइंड में आ जाएगा गोलगप्पे देख के खा ले यार बस सामने, तो आप गीता का श्लोक आपको याद आ जाएगा, या क्लास में सुना था बिना भोग के, क्या श्लोक, यज्ञ शिष्टा से ना मुचंते सर्वा के विषय, भैया बिना भोग के तो हम पापी खा रहे हैं, फिर खा ले कुछ नहीं, फिर आप ये ज्ञान ढक देगा काम वासना। और ज्ञान ढकने का मतलब नहीं कि श्लोक भूल जाओगे, श्लोक याद होगा, आप खा भी रहोगे श्लोक भी बोल रहोगे माइंड में। यज्ञ शिष्टना संत मुचंते करवा दे, एक खा के यार मैं पाप कर रहा हूँ, एक और दे दे पाप कर रहा हूँ। सी ऐसे होता है, नहीं होता है, सब कुछ याद रहता है फिर भी आप गलत काम कर रहे होते, गलत काम करते हुए आपको सब कुछ याद है फिर भी कर रहे हो आउट। ये भगवान उसकी शक्ति बता रहे हैं काम वासना की। आवृतम ज्ञानम ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानियों का नित्य वैरी है। अगर ज्ञान ज्ञान से ज्यादा नहीं कर पाओगे तुम, अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे, मेरी शरण नहीं लोगे, तो ज्ञान तुम्हें नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान खराब है, मगर ये समझना पड़ेगा सिर्फ नॉलेज से आप नहीं बच पाओगे। नॉलेज जो गीता की है वो आपको स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं, ज्ञान किसको तुष्ट कर, क्या पुष्ट कर दे, तुष्ट या ज्ञान कर्म को पुष्ट करता है, पुष्ट या एनीवे जो भी है। सो ज्ञान क्या करता है, सेवा में उत्साह देता है नहीं, कर्मयोग में उत्साह करता है, पुष्टि करता है नहीं, पुष्टि तुष्टि जो भी है। सो उसका ये रोल है, अगर आप सेवा ही अच्छी तरह नहीं करोगे तो क्या कर लेगा फिर ज्ञान, मतलब उसका काम ही वो है तो काम वासना ढक देगा। इसलिए बड़े बड़े लोग होते जिनको सारी गीता रटी होती, कुछ नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स नहीं होते, टिप्पणी लिखते हैं पूरी गीता पर टिप्पणी लग दी, वहां गीता चिंतन ऐसे होते हैं, कहीं कहीं बने होते हैं, नहीं यहाँ पे पंजाब में तो है कहीं कहीं ग्रुप है गीता चिंतन वाले, पूरा चिंतन करेंगे गीता की, वो सब चलता रहेगा। और किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, अपनी अपनी किताबें लिख के वे बांटते हैं गीता की, देखे फ्री बांटते हैं कुछ लोग, पता है गाँव में बड़े सो अपनी फ्री बांटते हैं, हमने गीता लिखी है, और कंप्लीट नॉनसेंस होते हैं। सो ऐसे कई लोग हैं, हेल्प नहीं करता। ओके उसके बाद प्रभुपाद वैसे इसके एंड इस तात्पर्य की एंड लाइन में लिख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, भोग करते हुए प्रसन्नता की मजा तो आता ही है ना, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम, ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा तो आता है, ऐसी बात नहीं है संसार में सुख नहीं है, ऐसी बात नहीं भोग में सुख नहीं, ऐसी बात नहीं गोलगप्पे खाने मजा नहीं आएगा, आएगा आपको, मगर ये मजा ही सबसे बड़ा शत्रु है। ये जिसने सीक्रेट समझ ली वो निकल गया, मगर प्रॉब्लम ये कि ये आप जब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप हायर टेस्ट नहीं लोगे, जब तक नहीं समझ सकते आप। भाई आपने पूरी गीता तो पढ़ ली, और आपने पढ़ लिया दुखा लिया मशाश्वतम, दुख पूर्ण संसार है, आप कहो मगर मजा तो आ रहा है, भगवान कह रहे हैं यहां पर दुख है मगर मुझे तो मजा आ रहा है, अब इसको कैसे आप रोकोगे। नहीं अब एक ख्याली पुलाव तो नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, मजा ही आ गया। सो हाउ डू डू दैट, तो जब तक आप कन्विंस नहीं हो कि ये मजा जो है ये है, मगर इसकी इन्फीरियर क्वालिटी है, क्वालिटी भी अलग अलग होती है ना, जैसे कैंपा कोला और कोक अलग है नहीं है, क्या है बंटा बंटा तो कुछ लोगों को बंटा ज्यादा अच्छा लगता है। सो कुछ हाँ कुछ थर्ड क्लास की चीजें होती हैं, कुछ हाई क्लास की चीजें होती हैं, होता है नहीं होता है, जैसे आटा आप खरीद के लाते हो, एक थर्ड क्लास आटा मिलेगा, एक शक्ति भोग का आटा मिलेगा, एक एमपी का आटा मिलेगा, सो क्वालिटीज है नहीं है अच्छी। सो ऐसे ही इस संसार की किस सुख की क्वालिटी अच्छी नहीं है ये समझना पड़ेगा, मगर वो हायर टेस्ट लेके होगा वरना नहीं। अगर आपको चैंटिंग में सुख नहीं आ रहा तो आप फंस गए, आप फंसोगे, कोई कुछ नहीं हो पा सकता, आपकी नॉलेज काम नहीं करेगी, आप रट लो सब कुछ, नहीं काम कर सकती वो। और सुख कब आएगा भगवान की सेवा में, जब आप सेवा अच्छी तरह करोगे तभी तो मजा आएगा। सेवा अच्छी तरह नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। मगर पॉइंट भगवान यहां पे बता रहे हैं, सेवा अच्छी तरह की, सुख आया, मजा आया, मजा आया तो फिर काम वासना तो एडवाइस करेगा मगर उस एडवाइस को हम सुनेंगे नहीं और उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, है नहीं? ओके, सो अगर ये समझ आ गया तो भगवान ने शक्ति बता दी काम वासना की, नहीं? अब कृष्णा बता रहे हैं आगे कि काम वासना रहती कहाँ है। अब हमें अटैक करना है, नहीं हटाना है, नहीं शत्रु को निकालना है, नहीं शत्रु को निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा रहता कहाँ, तभी तो निकालेंगे, तभी तो अटैक करेंगे। क्योंकि काम वासना बार बार आपको भक्ति के रास्ते से दूर करता रहेगा। अगर आपको मजा भी आ रहा है ना भगवान की सेवा में, तो काम वासना पूरी कोशिश करेगा कि आपको, आपके ज्ञान को ढक के संसार की जो आनंद है वो और बढ़ा दे और आप भूल जाओगे भक्ति का आनंद। ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है, भक्ति में बहुत आनंद आता है मगर अगर हम ध्यान नहीं देना संसार में फंस जाएं, तो जब भक्ति का आनंद आ रहा होता है तब हमें पता होता है कि यार संसार क्या बेकार है, नॉनसेंस है, तब लगता है ना। मगर धीरे धीरे क्या होता है, काम वासना हमारे इस आनंद को, ज्ञान को ढक देती है अगर स्ट्रांग है तो, और फिर वो भूल जाते हैं और संसार का आनंद हमें और अच्छा लगने लगता है उस टाइम। तो अब हमें इसलिए बेस्ट ये है, आप कितने अलर्ट रहो भगवान कह रहे पकड़ लेगी आपको, कितनी आप अलर्ट हो काम वासना के प्रति वो ये शत्रु आपको पकड़ लेगा, वो आप नहीं छूट सकते इससे, क्योंकि ये आपके अंदर ही रह रहा है। बेस्ट है कि इसको मार दो, खत्म ही कर दो, यही तरीका और कुछ नहीं है। चाहे आप कितनी आपको अच्छा लगता है वो, कभी कभी शत्रु रह के वो अच्छा फ्रेंड बन जाते, नहीं बन जाते, कभी कभी अपने शत्रु को भी नहीं मार सकते आप, पता है? अगर आसक्ति हो जाए ना शत्रु से, नहीं मार पाओगे, होता है, नहीं होता है। इसलिए लोग अपनी पत्नी को बाहर ही नहीं निकाल पाते घर से, वो उसको पता है मैं पागल हो गया इसके साथ, फिर भी नहीं निकाल सकते उसको, अटैच हो गए, क्या करोगे। होता है, कभी कभी होता है, नहीं होता है, कभी कभी आजकल की औरतें इतनी गंदी होती हैं, कहीं चीटिंग भी, चीट भी करती हैं, पीटती भी अपने पति को, पता है ऐसा भी होता है, बट फिर भी वो नहीं निकाल सकता क्योंकि अटैच है। सो हम कई जन्मों से हमारे हृदय में काम वासना, हम निकालना ही नहीं चाहते, हमें पता है हमारी हानि कर रहा है, हमें पता है कि हमें गलत चीज में ले आता है, फिर भी हम नहीं निकालना चाहते, प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गई है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसको मार ही दो, बस खत्म करो यार, अब एक बार में खत्म करो, अब बार बार कितना तुम अलर्ट रहोगे, कितना लड़ते रहोगे, नहीं नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ज्ञान को ढक देगी, यू कांट डू, सो फिनिश, बस क्या कहते हैं उसको, ना रहेगा बांस, बस हाँ एक बार में खत्म कर दो, बस थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर खत्म कर डालो बस काम वासना। तो अब खत्म करने के लिए कहां रहते हैं ये तो पता लगाना पड़ेगा। सो क्या करें, तो 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, थोड़ा सा निर्दय बनना पड़ता है, नहीं? 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम वासना मतलब इच्छाओं के, गलत इच्छाओं के निवास स्थान क्या है, इंद्रियानी मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिया मनोबुद्धि इस काम वासना का निवास साधन है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। सो तीन जगह रहती है काम वासना, मन, इंद्रिय और बुद्धि में, और वहां से अपना काम करती रहती है बैठ के अपना। सो जो इंद्रियों में बैठ के, जब इंद्रियों में बैठी है तो इंद्रियों को संसार से आकर्षण कराता है, जब मन में बैठती है तो मन में इच्छाएं आती हैं, बहुत सारी इच्छाएं लाता रहता है, और जब बुद्धि में बैठती है तो बुद्धि गलत प्लानिंग शुरू कर देती है, भगवान के एंटी। सो इस तरह से काम वासना तीन जगह बैठ के, तीन तरीके से काम करके, तीन जगह क्या मतलब, हमारे पास है क्या, इंद्रिय मन बुद्धि तो है, और क्या है, मतलब पूरा कॉन्कर कर लिया आपके फोर्ट को, पूरा कॉन्कर्ड हो अब, पूरे अधीन हो अब काम वासना के। इसलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रिय मन बुद्धि एक जगह नहीं है, तीनों जगह है, वही हमारे पास है, बस खत्म, पूरा कॉन्कर्ड हो, अब करें क्या। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं आत्मा को तात्पर्य में लिख रहे हैं आप देखो श्लोक के ऊपर, आत्मा को भौतिक इंद्रियों भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। इंद्रिय मन बुद्धि में रहकर काम वासना, इतनी ज्यादा हम काम वासना से प्रेरित हो चुके हैं कि हमें भोग करने की लत पड़ गई है बस। और प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्ये स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर ही मैं हूं, जो इन शरीरों के विकारों को अपना स्वजन समझता है, शरीर के विकार मतलब बाय प्रोडक्ट्स, नहीं नहीं स्वजन मनमुद्र नहीं माई बाप बच्चे और घर के लोग उनको अपना स्वजन समझता है, स्वजन नहीं है वैसे, पता है भागवतम क्या कहती है, भागवतम में लिखा है कि हमें लगता है कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, मगर भागवतम कहती है, और मजा भी आता है उनके रहने में, मगर भागवतम कहती है अगर ध्यान से देखो तो वो बहुत बड़े डाकू हैं, स्वजन दस्यु, आपको लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे, नहीं लूट रहे कृष्ण लूट रहे हो नहीं पापा को, अब कृष्ण कहेगा मुझे एक्सबॉक्स चाहिए, मुझे वीडियो गेम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा तो मेहनत कर रहे हैं, कृष्ण एंजॉय कर रहा है,
पहली क्या तरह से मैं जान
है तो कृष्ण को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कर सकते पापा काम करते रहे आप एंजॉय करते रहो, नहीं, तो इसलिए आपको भी थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं होती, ठीक है नहीं ठीक है, सो पढ़ाई अच्छी तरह करनी पड़ती है और थोड़ी हेल्प करो पापा की, एनीवे बाय द वे सो या मतलब बहुत ऑड ऑड भागवत पढ़ोगे तो भागवत पढ़ के ना आप कभी कभी दिमाग चक्कर भी खा जाए खुद के लोग ही डाकू निकले लो हमें ही हर रहे सो और जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है 15 अगस्त RSS 26 जनवरी सब ऐसे, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, तो तीर्थ स्थलों की यात्रा केवल नहाने धोने के लिए चले नहीं आते, गंगा जी में हरिद्वार चले आते हैं, वो चले आए अब तो स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए, वो गधा है, सैव गोखरा, गोखरा मतलब गधा या बैल है, दैट्स ऑल इज, और उसको गधा किसने बनाया है, काम वासना ने, और उसको मगर रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम ही है, हमने उसको अलाउ किया ना अपने अंदर रहने को, यानी हम ही तो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर वो आके पूरा फंसा के हमें जकड़ लेती है नहीं, पूरा उसको कंट्रोल में आते हैं हम, सो बस खत्म, दैट्स ऑल फिनिश, तो गधा बन गए हम, गधे बन गए और क्या हो गया, सो ढक गया माइंड पूरी तरह, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रभुपाद बहुत कोट करते थे, यस्य आत्मा बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्र आदि शुभम इच्छति, वेरी नाइस, मतलब पूरी इस श्लोक में ना पूरी सोसाइटी रख दी है सुखदेव गोस्वामी ने, यही चल रहा है सोसाइटी में और कुछ नहीं चल रहा है, यही चल रहा है बस, ये याद करना है तो याद कर सकते हो बस, ये बेस्ट श्लोक है, सो आप देख लो क्या है, क्या करा है काम वासना ने, हमारी क्या हालत बना दी है, जीव को करे गाधा, जीव को गधा बना दिया काम वासना ने, इच्छाओं ने पकड़ लिया, हम गधे बन गए, अब करें क्या, अब क्वेश्चन है करें क्या, अब हम पूरी तरह कॉन्कर्ड है, हमारा ज्ञान सब नष्ट हो रहा है, सेवा हम कर रहे हैं, सेवा कर नहीं पा रहे, बार बार तंग करती रहती है काम वासना, इच्छाएं आती रहती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, सिर्फ नॉलेज से आप नहीं रोक सकते इसको, असंभव है, ज्ञान इनो नित्य वैरेना, असंभव है, आप रट लो भागवतम, रट लो गीता, रट लो आप पूरे वेद रट लो, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने कई चतुर्वेदी देखे, द्विवेदी से ऊपर है चतुर, कई देखे हैं, मैंने कई लोग देखे जिनको सारे वेद रटे हुए हैं, मगर एब्सोल्यूट नॉनसेंस, जितने भी जो वेद पढ़ने वाले हैं ना, वैसे बताऊं उनके सबके दांत में पावन लगा होगा 100% पान पान आपकी सीडी नहीं है वेद वाली, उसमें भी मैं देख रहा था, वो बोल रहा था दांत दांत में साफ पता लगता दांत खराब थे पानी का। हो सकता है। सो ये होता है बस, मतलब बनारस चले जाओ, चले जाओ, सब भरे पड़े हैं, सब वेद वेद बोलते हैं, पान खाते रहते हैं और बीड़ी फूकते रहते हैं, यही काम है उनका। मतलब मैं तो इनसाइड आउट देख चुका हूँ ना, मैं तो रहा हूँ वहाँ बनारस में, जब शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था मैं वहाँ पे भी गया था, मैं आराम से वहाँ पे बैठा था थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बट आई वाज देयर। सो मुझे पता है हरिद्वार में तो काफ़ी टाइम रहा था, सब ऐसे ही है, बेवकूफ लोग है। सो एक्चुअली पता है शीला प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने ये युवा टेलिंग में क्या था कि प्रभुपाद के पास कुछ फॉरेन डिवोटीज आए, तो फॉरेन डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद तो हम लोग राधा रमन मंदिर गए थे, राधा रमन मंदिर नहीं है, तो वहाँ के पुजारी ने हमें बुलाया, मतलब फॉरनर्स उस टाइम हेट डिफरेंस था ना, फॉरनर्स को अलाउ, प्रभुपाद के टाइम लोग कहते थे कहाँ से फिरंगी लोग आ गए, मगर राधा रमन परिवार वाले थोड़े डिसेंट लोग थे, उन्होंने फॉरनर्स को बुलाया, प्रभुपाद डिसिपल्स को, उन्होंने स्पेशली भगवान का प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया उनको, और उनको बोला कि तुम्हें राधा रमन जी का आशीर्वाद है और तुम अगले जन्म में और बहुत बड़े वैष्णव बनोगे, वृंदावन में तुम्हारा जन्म होगा। तो वो प्रभुपाद गया, प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद हम बहुत खुश हैं, प्रभुपाद ने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमें राधा रमन जी आशीर्वाद मिला और ये मिला, उन्होंने कहा अगले जन्म में तुम वृंदावन में जन्म लोगे, इतना अच्छा है। वन ने कहा ठीक है, तुम उससे जाके बोलो, पुजारी से वापस जाओ, उससे बोलो कि राधा रमन की कृपा अगर आप पे होगी तो तुम्हारा जन्म अगले जन्म में अमेरिका में होगा और फिर तुम प्रचार करोगे, तुम यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो। दैट्स यू सी प्रभुपाद की विजन, वृंदावन में बैठना ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के प्रीचिंग मिशन में, प्रीचिंग मिशन में अपना सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, राम भगवान यही तो था, सारे ऋषि बैठे थे डंडा करने में, पता नहीं डंडा क्या कर रहे थे वहां पे बैठे बैठे, तो तब कर रहे थे, मगर उससे श्रेष्ठ कौन है, बंदर जो भगवान की सेवा में लगे थे। प्रभुपाद ने कई बार अपने लेक्चर में बोला है कि हम लोग ऋषि नहीं बनना आते, उससे बेटर है हम बंदर बन जाए राम के, कुछ करे तो सही भगवान के लिए, बैठे बैठे क्या होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसको भगवान अपने सेवा में नियुक्त कर लेते हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो भगवान यहां पे कह रहे हैं ठीक है चलो, दैट्स ओके, प्रॉब्लम्स है नहीं। अब क्या करें, अब मारना तो है ही ना काम वासना को, पूरी तरह हम जकड़े हुए नहीं हुए, सेवा करने नहीं दे रहा, क्या करें। सो 41 श्लोक में अब कृष्णा सॉल्यूशन दे रहे हैं, दो ही तीन श्लोकों में भगवान ने सॉल्यूशन दे दिया कि काम वासना को मारो कैसे। अब पूरी तरह कॉन्कर्ड है, कहीं से शुरू करें, क्या करें, अब कहां से शुरू करें, इंद्रिय मन बुद्धि सब में बैठा हुआ है काम वासना, अब कहां से शुरू करना चाहिए, क्या कहते हो, इंद्रिय मन बुद्धि कहां से शुरू करें। भगवान कह रहे हैं 41 में, तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ नियमे भरत ऋषभ पापमानम प्रजायेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, इंद्रियों से पहले शुरू करो। द्वार, ये बात नहीं द्वार है, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि पता है क्या है, मन से तो आप शुरू नहीं कर सकते, मन में बहुत स्ट्रेंथ है नहीं। अब शत्रु को देखना पड़ेगा ना कौन सब, जो सबसे वीक पॉइंट है वहां पर अटैक करोगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक नहीं करता, वो बेवकूफ है व्यक्ति। तभी तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कहाँ कहाँ है, कहाँ का स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, सबसे वीक पॉइंट पे अटैक कर दो। सबसे वीक पॉइंट है इंद्रियां, वहां पे पहले अटैक करो, मन पे तो कर ही नहीं सकते, मन तो सबसे लास्ट है, मन आउट ऑफ कंट्रोल है। बुद्धि भी इंद्रियों के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, बुद्धि भी एक बार प्लानिंग शुरू कर देती है फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड। बुद्धि का लॉजिक है ना, लॉजिक, ये एज ऑफ लॉजिक है, बुद्धि ऐसा लॉजिक देगी कि आप बस फिर कन्विंस्ड हो जाओगे, कन्विंस हो गए तो क्या करोगे। सो कभी कभी बुद्धि मन से भी ज्यादा स्ट्रेट, मतलब वो डेंजरस हो जाती है नहीं, मन तो चलो बोलेगा आप हटा सकते हो, बुद्धि कन्विंस कर देगी आपको, बुद्धि कन्विंस कर देगी ये साले भक्त नॉनसेंस है, क्या करोगे, हो जाएगा या बकवास भक्त है मैं नहीं जा रहा, अब कौन बचाएगा आपको क्या कन्विंस हो गया हम बुद्धि भी बुद्धि कहेगी सुबह उठ के क्या करेंगे, ये भी होता है. सो सबसे वीक पॉइंट है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों के पास बुद्धि नहीं है. नहीं, इंद्रियां डेड है ना, मतलब इंद्रियों के पास ना लॉजिक है बुद्धि का, ना मन मन की इच्छाएं हैं. इंद्रियां एक बस डोरी टाइप की हैं, और क्या, जैसे आप कह रहे थे डोरी है ना, तो सबसे वीक पॉइंट है. बस आपको इंद्रियों को, इंद्रियों पर अटैक करो सबसे पहले. इसलिए कृष्ण कह रहे तस्मात तुम इंद्रिया आदो. इंद्रियों पर अटैक कैसे करोगे? नियम में भरत ऋषभ, नियम फॉलो करके नियमित करो इंद्रियों को, रूल्स फॉलो करो. इसलिए पहले भक्ति में रूल्स बताए जाते हैं. नहीं, पहले भक्ति में नॉलेज नहीं बताई जाती, पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पहले रूल्स फॉलो करने होते हैं. अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगी. आप पहले अंडरस्टैंडिंग में लग जाओगे, बिना रूल्स को फॉलो किए तो कुछ नहीं होगा. सो कोई नया भक्त आता है, रूल्स बताते हैं ना भाई, रूल्स फॉलो करने हैं आपको. क्यों करने है? क्योंकि ये सबसे वीक पॉइंट है. तो प्रभुपाद अपने पपट में लिख रहे हैं सब. ओके, सो अपने रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिए, तो इंद्रिय थोड़ा सा कंट्रोल में आ गई. भाई नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मेडिटेटिंग, ये सारे रूल्स ही है ना सारे, आपने शुरू कर दिए. चार ही फिर भक्ति रसमृत सिंधु में और दिए रूल्स. भक्ति रस, अगर और रूल्स आना है तो भक्ति रसमृत सिंधु पढ़ो, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें सारे रूल्स की लिस्ट है, आप फॉलो कर सकते हो उसको जितना कर सकते हो. सो आप बहुत अच्छे, मतलब आप वॉर में आप एक एडवांटेजेस पोजिशन में होगे. लड़ाई चल रही है ना काम बास ने शत्रु से. सो नियम मत तोड़ो. अगर आपने नियम तोड़ दिया तो क्या होगा? स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो पोजीशंस हैं काम वासना की, मन बुद्धि उसे तो कुछ कर नहीं सकते. वीक पोजीशन भी आपने लूज कर दी. दुश्मन आप कभी भी दुश्मन को नहीं हरा सकते, कभी नहीं हरा सकते. इसलिए कभी भी नियम मत तोड़ो. नियम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वीक, क्या कहते हैं, जो वीक पोजीशन है, अगर एक बार उसको कंट्रोल करके रखा है तो धीरे धीरे युद्ध, फिर व्यक्ति युद्ध फिर जीत जाता है. जीत जाओगे आप. ये युद्ध का रूल है. इसे वो नहीं बनाया था चक्रव्यूह. तो क्या कहा था? तो अभिमन्यु ने कहा था ना कि मैं जो वीक पॉइंट है वहां से अंदर जाऊंगा, और फिर मुझे बाहर तो चलो उसको आता ही नहीं था, मगर ना भीम ना युधिष्ठिर वो कोई भी चक्रव्यूह को भेद नहीं पा रहे थे. अर्जुन था नहीं वहां, मगर अभिमन्यु ने कहा मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे वीक पॉइंट पता है, मैं अंदर घुस जाऊंगा. सो अगर आपने वीक पॉइंट पता है तो आप उसके अंदर जाके फिर दुश्मन को मार सकते हो. नहीं, सो नियम हमें ये हेल्प करते हैं. और फिर उसके बाद क्या करो? एक बार आपने नियम फॉलो कर लिए, आपने वीक पॉइंट पकड़ लिया, उसका रूल्स फॉलो कर लिए, फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं इंद्रियानि परानि आहुर इंद्रेभ्यः परम मना मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परा सस्तु सा. कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है. भगवान ये क्यों बता रहे हैं श्लोक? आप बाद में पढ़ना पपट. भगवान बता रहे हैं देखो भी आपने इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट भी तो करना है, काम वासना मन और बुद्धि में भी तो बैठी है, और आत्मा पूरी तरह कंट्रोल में. तो भगवान कह रहे हैं देखो भाई अब नेक्स्ट क्या करें? इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन. मन से ऊपर है ज्यादा स्ट्रांग, मन से स्ट्रांग है बुद्धि, और बुद्धि से स्ट्रांग है आत्मा. सो नेक्स्ट अटैक कहां होना चाहिए? पहला अटैक तो इंद्रियों पे हो गया, नेक्स्ट अटैक क्या कहां करोगे? नेक्स्ट अटैक बुद्धि पे होगा, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह कंट्रोल्ड है. आत्मा तो कंट्रोल्ड ही है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो पूरा जंगल में ही है. मन और बुद्धि में मन ज्यादा स्ट्रांग है. वैसे तो बुद्धि मन के ऊपर है, मगर मन, पता है क्या, मन चंचल है. एक्चुअली मन को कंट्रोल करना मुश्किल, स्ट्रांग नहीं है मगर चंचल है. चंचल को ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल और कृष्ण में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? राहुल ना, मगर कंट्रोल करना किसको मुश्किल है? वीक चंचल बच्चे को. नहीं, बच्चा है ना. सो ऐसे ही है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि आधा स्ट्रांग है मन से, मगर मन चंचल है, इसलिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है उसको. इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले बुद्धि पे अटैक करो, क्योंकि मन को समझा नहीं सकते आप. बुद्धि को समझा दोगे, मन नहीं समझेगा। इसलिए कृष्ण अपने अगले श्लोक में कह रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा समस्तभ्यम आत्मना आत्मना। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, बुद्धि की बात आ गई, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। फिनिश हो गया, बस खत्म हो गया, आपने जीत लिया, आपने इंद्रियों को नियम में बांध दिया। बुद्धि पे अटैक किया, बुद्धि पे कैसे अटैक किया आपने? आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा नहीं, बुद्धि पे, बुद्धि को क्या करना है आपको? भगवत की नॉलेज लो, नहीं उसे अटैक होगा ना, राइट रॉन्ग का पता लगेगा, और धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते विवेक आ जाएगा कि भोग वासना क्या है और भक्ति क्या है। आध्यात्मिक बुद्धि आ गई ना, बुद्धि आपके कंट्रोल में आ गई, चेंज हो गई, बस बुद्धि हो गया, बुद्धि ऊपर है, इंद्रिय नीचे, आपने दोनों कर लिया, बीच में मन क्या करेगा फिर? तो बस खत्म, चंचल क्या कर सकता है मन, नहीं कुछ नहीं कर सकता, नहीं जैसे कृष्ण कुछ नहीं कर सकता। अभी एक तरफ राहुल है, एक तरफ मैं हूं, क्या कर ले, बैठ बैठना पड़ेगा, नहीं अब मन है ना चंचल है, मगर यहां पे नहीं कर सकता। सो ऐसे ही है, दोनों कंट्रोल कंट्रोल है दोनों तरफ से। सो ये भी बच्चों की बात हो रही है। सो पॉइंट ये है कि काम वासना को जीतने के लिए हमें दो चीजें करनी है बस, अगर सारा निष्कर्ष निकालो, क्या करना है? रूल्स फॉलो करो और भगवत गीता की नॉलेज लो, और उस नॉलेज को सेवा करके अनुभव में कन्वर्ट करो, वो आध्यात्मिक बुद्धि बन जाएगी, तब बच सकते हो, अदरवाइज नहीं बच सकते, अदरवाइज फंसेंगे, असंभव है। बस कर्मयोग खत्म हो गया, कर्मयोग का भगवान ने स्वरूप बता दिया, इस अध्याय में भगवान ने बता दिया कि कर्मयोग होता क्या है, और जिसके लिए काम कर रहे हैं भगवान कौन है, जो सेवा कर रहा है उसकी साइकोलॉजी कैसे चल रही है, और सेवा में रुकावटें क्या है, ये रुकावट ही है ना, वो क्या है और उसको हटाना कैसे, वो भी बता दिया। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप।